हम सब की फितरत में इंग्रेव्ड है तौहीद। जैसे कंप्यूटर है ना, डेटा के अंदर आप कोई चीज़ डाल देते हैं तो फिर वो जब चाहे निकाल लेते हैं। फितरतन हर बच्चा मुवाहिद है। हम जब गुनाह करते हैं तो हमें वो वादा भूल जाता है। हर एक अपने आप को पूछे, क्या मुझे तौहीद का वो वादा याद है? जितना हम शिर्क में जाते हैं वो वादा भूल जाता है। जितनी नाफरमानियाँ करते हैं उतना ही इस वादे से हम दूर होने लगते हैं। तो ज़रूरत है कि अपनी फितरत को ज़िंदा रखा जाए। और ऐ नबी, उस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था। हर एक सोचे और सुने और गौर करे कि जो आयात को सीख चुका या सिखा रहा है या अभी सीखने के मरहले में। हमने उसको अपनी आयात का इल्म अता किया था मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा। बड़ी मुश्किल होती है आयात की पाबंदी। जो ही उसने किताब को छोड़ा, आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहाँ तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। आप इस किताब को अपने लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर समझें, शील्ड है ये मेरे और आपके लिए। हाथ से हटती है ना तो कितने शैतान हमारे पीछे लग जाते हैं। अगर हम चाहते तो इसे इन आयतों के ज़रिए से बुलंदी अता करते, यानी दीन की इज्जत देते, मगर वो तो ज़मीन ही की तरफ झुक कर रह गया, यानी मादा प्रस्त हो गया, मटीरियलिस्टिक हो गया, जॉब करने लग गया, माल के लिए किताब को छोड़ दिया, दुनिया के इल्म के लिए दीन के इल्म को छोड़ दिया और अपनी ख्वाहिश नफ्स ही के पीछे पड़ा रहा। लिहाजा इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम उस पर हमला करो तब भी ज़ुबान लटकाए रहे और इसे छोड़ दो तब भी ज़ुबान लटकाए रहे। यानी हर वक्त राल टपकती है, बड़ी बड़ी चीज़ें दे कहते हैं, हाय ये मशीन भी घर में नहीं, हाय ये नया मॉडल आ गया, हाय सो स्वीट सो नाइस। और दुनिया में शैतान ने ऐसे जाल फैलाए हैं कि हर वक्त नई से नई चीज़ें मार्केट में आती हैं। इसका इलाज क्या है कि मार्केटें बंद करवा दें और चीज़ें बननी बंद हो जाएं? नहीं, आप बाज़ार जाना छोड़ दें, राल टपकनी कम हो जाएगी। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं। तुम ये हिकायात इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। करते हैं गौर व फिक्र। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और वो आप अपने ऊपर ही जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद रहता है। और हकीकत यह है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नुम ही के लिए पैदा किया। कुछ हुआ आपको सुनते हुए? इनके पास दिल और दिमाग तो हैं मगर वो इससे सोचते नहीं, क्योंकि दिल और दिमाग में तो दुनिया बसी हुई है ना। इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, क्योंकि आंखें तो कुछ और तमाशे देखने में महव है। इनके पास कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं, क्योंकि कान तो ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल सुनने में मसरूफ़ है। वो तो जानवरों की तरह हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा आगे गुज़रे। क्यों? कि जानवर भी आका को पहचानता है, जिसका खाता है उसका फर्माबरदार होता है, लेकिन ये इंसान जिस रब का खाते जिससे लेते उसी की नाफरमानियाँ करते हैं। ज़रा सोचिए, जानवरों के दर्जे से अल्लाह नीचे गिरा रहा है। अल्लाह ने आसानी तकवीम दी, इंसान असफल साफ़लिन में चला गया। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं। ये हैं गाफिल लोगों पर अल्लाह का कमंड। गफलत लोगों को बड़ी प्यारी लगती है। कोई कुछ ना कहे गाफिल है, मौज मस्ती आराम खुशी का नहीं, गाफिल अल्लाह की नज़रों में ऐसे लोगों की तरह जिनकी मिसाल दी गई। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नाम रखने में रास्ती से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक हिदायत और हक़ के मुताबिक इंसाफ करता है। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया, तो इन्हें हम बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें खबर भी ना होगी। मैं इनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। ऐसे लोग खुद फिसलते हैं। एक दफ़ा आप दलदल में पांव रखें, आप अंदर गिरेंगे। गुनाह भी एक दलदल होते हैं। इसके अंदर जाने वाला जब तक खुद ना संभले या कोई दूसरा इसको हाथ बढ़ा कर ना थामे, ये नहीं निकलेगा वहाँ से। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा कि इनके रफ़ीक पर जुनून का कुछ असर नहीं? वो तो एक ख़बरदार करने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ आगाह कर रहा है। अल्लाह के नबी को कहते थे, इनको क्या दीवानगी है, हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हर वक्त दीन की बातें, दीन दीन, ये ना करो वो करो। लोगों को ऐसे लोग क्रेज़ी लगते हैं, मजनू लगते हैं। अच्छा, ऐसे लोग दुनिया हासिल करने के लिए भागे तो कहते हैं सो परफेक्शनिस्ट, हाय सो हार्ड वर्किंग, सो कमिटेड, बारिश में भी आ जाते हैं, सर्दी में भी आते हैं, ये छुट्टी नहीं करते। दुनिया को पाने वाला अच्छा काम करे तो लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, और हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की तारीफ़ इसीलिए तो करते हैं कि बहुत फोकस्ड है, बहुत कमिटेड है, और ज़रा हम कहें अच्छा चलो ये सारी चीज़ें हम दीन पे आजमाएं तो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, और तुम बहुत ही ज़्यादा वो फनेटिक हो गए। वहाँ परफेक्शनिस्ट नहीं कहते कि शुक्र है अब तुम दीन में परफेक्ट होने लग गई हो, तुमने अपनी नमाज़ ठीक करनी शुरू की, अपने आप को ठीक रखा, उस वक़्त क्या कहते हैं ये मजनू है। अल्लाह के नबी को भी कहते थे, आपको तो नहीं कोई कहने लग गया कि हर रोज़ उठ के चल पड़ते हैं? अभी नहीं कह रहा इसका मतलब कि अभी फिर कुछ कमी है। चलिए, क्या इन लोगों ने ज़मीन व आसमान के इंतज़ाम पर कभी गौर नहीं किया? आपने कभी किया? और किसी चीज़ को भी वो जो अल्लाह की पैदा कर दे आँखें खोल कर नहीं देखा? जवाब दीजिए, कभी बाहर निकलते हुए गौर किया, तदब्बुर किया? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत ज़िंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस तंबी के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ईमान लाएं? हम में से किसी को नहीं पता ना हमारी मौत कितनी करीब है। जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, इसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर वो क़्यामत की घड़ी कब नाजिल होगी? क्यों भाई, क्यों पूछ रहे हो? कहो इसका इल्म हमारे रब ही के पास है, उसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों और ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। ये लोग उसके मुतल्लिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम इसकी खोज में लगे हुए हो। कहो इसका इल्म तो सिर्फ़ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। ए नबी इनसे कहो, मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है। लोग कहते हैं नहीं, जो नबी चाहता है वो होता है। कहा नहीं, जो अल्लाह चाहता है बस वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता। क्या तावील करते होंगे लोग इस आयत की जो नबी सल्लम को आलिमुल गैब समझते हैं, और कभी मुझे कोई नुकसान ना पहुँचता। कितने नुकसान पहुँचे आपको? अगर गैब जानते तो क्या वो जहर भरा गोश्त चख लेते? आपकी बीवी पर इल्ज़ाम लग रहे थे, क्या इतने जहनी दबाव में रहते? कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के नबी को हर बात की खबर है? मैं तो महज एक ख़बरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी बात को माने। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसकी जिन से इसका जोड़ा बनाया, यानी कि इंसान का जोड़ा किसी घोड़े से बना दिया। क्यों बनाया? शोहर और बीवी के रिश्ते का मकसद, लियस्कुना इलैहा, ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो इसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। इससे पता चलता है प्रेगनेंसी के बाद बैठ नहीं जाना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। कुछ लोग प्रेग्नेंट होने को बीमार होना समझ लेते हैं। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्र गुज़ार होंगे, मगर जब अल्लाह ने इनको एक सही सालम बच्चा दे दिया तो वो इसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। कैसे? पीरा दिता कहकर, बाबा जी ने दिता है, लेना तो बाबा जी दे दर तो जाके ले लो, हाँ कब्रों पे जाके मांगते हैं। अल्लाह कहते हैं मैं देता हूँ और शरीक दूसरों को बनाते हैं। अल्लाह बहुत बुलंद और बरतर है उन मुशरिक बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि ख़ुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते और ना ही आप अपनी मदद पर कादिर हैं। कुरान आम कर दिया जाए तो क्या ये शिर्क हो सकता है जो आज आपको चारों तरफ दिखता है? कितनी खुली आयतें, इसमें तो किसी तफसीर की ज़रूरत ही नहीं, फिर भी लोग कब्रों पर जाके मन्नतें माने और मुरादें पूरी करवाएं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए, क्योंकि मुश्किल होती है ना, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तुम ख्वाह इनको पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसां है। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं। यदि किसी कब्र पे खड़े हो जाएं और पुकारें, कोई जवाब आता है? क्या ये पाँव रखते हैं कि इनसे चलें? पाँव होते तो कब्र फाड़ के बाहर आ जाते, कुछ करनी वाले होते तो खुद को तो कब्र से निकालते, तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? कब्र में से मट्टी तो वो हटा नहीं सके। क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुने? ऐ नबी, इनसे कह दो, बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत न दो। मेरा हामी और नासिर वो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की है और वो नेक लोगों की हिमायत करता है, बखिलाफ़ इसके कि जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद करने के काबिल हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते क्योंकि बुरी लगती है इनको। बहरहाल तुमको ऐसा नज़र आता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फिल वाक़े वो नहीं देखते। ए नबी, नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। ये है असूल मुसलमानों को जो सिखाया जा रहा है, जाहिलों के मुँह ना लगो वरना वो तुम्हारे साथ भी जहालत बरतेंगे। अगर कभी शैतान तुमको उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। हकीकत में वो लोग जो मुत्तकी हैं, इनका हाल तो ये है। चेक करें हम सब, क्या हमारा ये हाल है? अगर नहीं है तो दुआ करें कि हो। इनका हाल तो ये होता है कि जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल इनको छू भी जाता है तो फौरन चुकन्ने हो जाते हैं और फिर इन्हें साफ नज़र आने लगता है कि ये गलत रास्ता है, इस पर नहीं चलना। ये नहीं कि गुनाह करके पछताते हैं, वो गुनाह करने से पहले ही हट जाते हैं वहाँ से। और इनको साफ नज़र आने लगता है कि इनके लिए सही तरीक़ेकार क्या है। रहे इन लोगों के भाई बहन तो वो इन्हें इनकी कजरवी में खींचे चले जाते हैं और इनको भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐ नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना मुंतखब कर ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। क्या पता चला कि कुरान में हिदायत और रोशनी तो है, मिलेगी किसको? जिसने कबूल की, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कबूल की तभी तो आके बैठे। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और खामोश रो, शायद कि तुम पर रहमत हो। कुरान सुनते वक्त खामोश रहना अल्लाह की रहमत को बुलाना है। एक खामोशी ज़ाहिर की होती है कि दूसरे हमारी आवाज़ें नहीं सुनते, हम हिलते जुलते नहीं, हम अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल होते हैं, लेकिन एक खामोशी सोचों की खामोशी होती है। जिस तरह हम ज़ुबान को बंद करके बैठते हैं ना इल्म की महफिलों में, इस तरह जहन की खिड़कियों को भी बंद करके बैठें, आप देखेंगे आपको ज़्यादा जज्ब होगा। और सोच कुछ और रहे हो, क्या पकेगा आज इफ्तारी में, क्या बनाना है, अभी दूध लेना है, अभी दही नहीं है, तो फिर समझ नहीं आएगा। तो ऐसी खामोशी वालों पर अल्लाह की रहमतें होती हैं। बस कर रब कफ़ी नफसिक, ए नबी अपने रब को सुबह शाम याद कर लिया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ और ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम इन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। क्या जवाब देंगे हम इसका? जी अल्लाह ताला, इंशाल्लाह हम गफलत की ज़िंदगी से निकलेंगे। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकर्रुब का मुकाम रखते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर इसकी इबादत से मुँह नहीं मोड़ते और इसकी तस्बीह करते हैं और इसके आगे झुके रहते हैं। हमें भी क्या हुक्म है कि झुक जाओ अल्लाह के हुक्मों के आगे, अक्लों को झुका दो। यहाँ पे कुरान पाक का पहला सजदा तिलावत है, तकरीबन 15 सजदे हैं कुरान पाक में। फ़र्ज नहीं है, लेकिन मौका हो और सहूलत हो तो फिर सजदा किया जा सकता है। अब यहाँ तो मुमकिन नहीं कि इतने सारे लोग उठेंगे और फिर वक्त भी नहीं है, बाद में भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं और इसमें दुआ भी पढ़ी जा सकती है। सजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हु वसव्वरहु वशक कसमहु व बसरहु बिखौलिही व क़ुव्वतिही। तो बहरहाल ये ना भी आती है तो सुभान रब्बी अलाला भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक खूबसूरत सूरत का इख्तिताम हुआ और एक और खूबसूरत सूरत का आगाज़ है। थोड़ा सा यहाँ से बात कर दूँ कि सूरत अनफाल से आगे कुछ सूरतें सीरत की रोशनी में पढ़ने वाली सूरतें हैं और इन सूरतों का ताल्लुक अल्लाह के नबी सल्लम के मदनी दौर से है। अभी जो सूरत हमने पढ़ी ये मक्की दौर की थी, बहुत सॉफ्ट बहुत हार्ड टची सूरतें होती हैं, लेकिन मदनी सूरतों के अंदर अमूमा नबी सल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात, हालात, जंगें और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो सूरत अनफाल में भी इस तरह की आयात आएंगी। अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए शुरू करते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسلونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، یعنی مال غنیمت. کہو، یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یعنی تم نے تو اس کے لیے نہیں جنگ کی تھی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے استعمال ہوں گے. تم اللہ کے لیے لڑو، مال کے لیے نہیں. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے متعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سوال ہوا تھا کہ مال غنیمت کی بانٹ کیسے کریں، اور یہ سوال کب اٹھا تھا؟ غزوہ بدر کے موقع پہ. پہلی جنگ تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمن سے جو مال آئے گا اس کو کیا کریں، کیونکہ پہلے نبیوں کے دور میں جو دشمن سے مال ہاتھ میں آتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا گندا سمجھ کے. امت مسلمہ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی کہ کہا، نہیں تم مال کے دشمن نہ بنو، ضائع نہ کرو، اس کو لے لو. اب کہ جب مسلمان مال لے کر آئے تو پوچھا، اب کریں کیا، یہ کس کا ہے، کس کو دیں گے؟ تو کہا، اس کو چھوڑ دو، یہ کوئی اتنا اہم سوال نہیں ہے، مال کے معاملے کو اتنے بڑے معاملے نہیں ہوتے. بلکہ کرو کیا، چار کام کرنے کو دے دیے. فتق اللہ واسلحو ذات بینکم، اللہ کا تقوی پیدا کرو، اپنے آپ کو مال کی محبت سے بے نیاز کرو، ان چیزوں کے لیے مت الجھو، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اور واسلحو ذات بینکم، آپس کے معاملات کی اصلاح کرو، تعلقات درست رکھو، کیونکہ بعض دفعہ مال ہونے کے باوجود بھی انسان خیر نہیں پاتا جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں. مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اخلاق سازی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے گروہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جہاں چار لوگ مل کے کام کرو گے وہاں مسئلے اٹھیں گے، ان مسئلوں کو بڑا نہ بناؤ، اپنی ذات کی اصلاح کرو، تعلقات کو بہتر کرو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس کا بگاڑ نیکیوں کو موڑ دیتا ہے. اس وقت امت کو یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہے. ہوں گے اختلاف، فقہی اختلاف بھی ہوں گے، چھوٹی موٹی باتیں چلتی جائیں گی، ان کو بھولو اور آؤ آپس میں تعلقات کو بہتر کرو. تیسری چیز، اطیع اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ چار کام کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. سچے مومنوں کے دلوں کی حالت کا تذکرہ، کتنی ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے دلوں میں. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں. ہمارے دل لرزتے ہیں خود سے پوچھتے ہیں. اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے آیتوں کے ساتھ؟ محاسبہ. اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، باقی تو سب نام کے ہیں. لہم درجات عند ربہم و مغفرۃ و رزق کریم. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. بڑے درجوں کے لیے بڑے حوصلے، بڑے کام. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا. دوبارہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ سورت آل عمران میں جب غزوہ احد کا ذکر آیا تو وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کا لفظ تھا، کہ نبی آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے. یہاں بھی آ گیا ذکر تو ساتھ ہی گھر کی بات آ گئی. ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا جب آپ جنگ کے لیے نکلے، لیکن اشارہ دیا کہ اللہ کے راستے میں گھر اور گھر والے تھوڑے بہت تو متاثر ہوں گے، نکلنا پڑے گا ان گھروں سے. کیونکہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے اگر انسان جاہل رہ جائے تو پھر دشمن سر پہ آ جائیں گے. یہاں سے اب دوبارہ جنگ کا تذکرہ ہے، تھوڑا سا پڑھ کے انشاءاللہ آپ کو میں ایک سٹریچ میں اس جنگ کی کچھ کیفیات بتاؤں گی.